कर्मकांड लेक्चर नंबर 10। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री निमिचंद जी ने इस गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडानंद जी ने सम्यक ज्ञान चंदी का कर्मकांड की रचना की और उसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ देख रहे हैं। कुछ प्रश्न है उसको लेकर हम फिर आगे बढ़ेंगे। वो बंध विक्षिप्ति के प्रकरण है। प्रश्न है कि द्रव्य स्पर्शेंद्रिय और औदारिक शरीर में क्या डिफरेंस है। देखो मनुष्य और तीरियों के औदारिक शरीर है, एक इंद्रियों के तो एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय है और वो स्पर्शन इंद्रिय कहाँ पाई जाएगी तो पूरे शरीर में। अभी संगी पंचेंद्रिय की बात करते हैं। पंचेंद्रिय जीव है तो उसी के पांचों इंद्रियां हैं, जहां उसकी रचना इंद्रिय है वहां स्पर्शन इंद्रिय है कि नहीं है। जीभ को केवल वो कड़वा और खट्टा ही समझता है कि चाय गर्म ठंडी भी समझती है, है? समझ में आ नहीं पा। तो स्पर्शन इंद्रिय जो है वो पूरे शरीर में है। शरीर जुदी बात है और उसी को वो द्रवेंद्रिय स्पर्श द्रवेंद्रिय कहाँ पर है तो पूरे शरीर में। ये उसके डिफरेंस है ना, पूरे शरीर में उसकी यानी वो सब जगह अंदर भी पेट में भी हो जाता है ना, जलन होती कैसे समझ में आता है। वहां पर भी वो स्पर्शन इंद्रिय है। यहाँ पर एक प्रश्न है कि 16 विक्षिप्ति हुई बिना नहीं 16 की विक्षिप्ति हुई ये बिना सम्यक्त्व के ही होती है। देखो जब विक्षिप्ति कहेंगे तो उस गुणस्थानों में बंध है, ऊपर के किसी गुणस्थान में उसका बंधन नहीं है। तो जो दूसरे गुणस्थान में है उसके लिए भी वो नहीं बन रही है, ये उसका अर्थ है। विच्छित्ति कब कहेंगे, जो ऊपर के गुणस्थानों में होगा तो कहेंगे ये पहले गुणस्थान की जो विच्छित्ति वाली प्रकृतियां है वो यहाँ नहीं बन रही है। अब जो ऑलरेडी मिथ्यात्व में है उसकी विच्छित्ति कब कहलाएगी, ऊपर के गुणस्थानों में जाएगा तब। पहले से दूसरे में तो कोई नहीं जाएगा, पहले से तीसरे में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। सारी मिथ्या दृष्टि जा सकता है, जिसकी सत्ता में मिथ्या तो सम्यक, मिथ्या तो सम्यक प्रकृति पड़ी है। एक बार सम्यक दृष्टि होकर फिर मिथ्या तो में आया है ऐसा जीव पहले से डायरेक्ट तीसरे में जा सकता है, तो उसके भी वो 16 नहीं बंधेगी वहां पर और वो 25 भी नहीं बंधेगी। तीसरे गुणस्थान वाले को भी वो 41 प्रकृतियों का बंधन नहीं होगा। तो यानी वो मिथ्यात्व गुणस्थान छूटे बिना उसकी विच्छुति कैसे कहेंगे हम। विच्छुति तब कही जाएगी वो जो ऊपर के गुणस्थानों में होगा, तब वो पहले गुणस्थान की विच्छुति कहलाएगी उसकी, वो 16 की। अब जो पहले से चौथे में जाता है उसकी पहले की और दूसरे की मिलकर सबकी विच्छुति हुई ऐसा कहेंगे हम। एक प्रश्न है, हम सादी मिथ्या दृष्टि है या अनादि मिथ्या दृष्टि है, इसका निर्णय कैसे हो सकता है। देखो इसका निर्णय हम आप नहीं कर सकते एक बार, पर हम मिथ्या दृष्टि इतना निर्णय हो जाएगी तो भी बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि और अपने को समय से मान लेते हैं ना, क्योंकि हमने इतने व्रत किए और हम समय दृष्टि हो गए, हमने इतना संयम पाला, हम समय दृष्टि है, बस ऐसे करते करते मोक्ष भी मिल जाएगा ऐसा जो मान रहे है, उनकी भूल क्या है कि अपने को मिथ्यात्व है और वो नहीं मान रहा है तो सम्यक्त्व प्राप्त करने का उपाय क्यों करेगा, ये प्रश्न है। सम्यक्त्व प्राप्त करने का उसने तो रास्ता बंद किया, फाइल बंद कर दी उसने अपनी, क्योंकि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, तभी मुझे निर्णय के लिए कोई आवश्यकता नहीं। जो उसकी भूल चल रही है वो तो चली रही है उसकी, तो शादि है या अनादि है ये तो केवल ज्ञानी का तो विषय है ही है। हाँ, इसे कोई अवधि ज्ञानी हो गया परमावधि सर्वावधि, वो आपके कर्मों को भी जान सकते हैं, वो उसको कह सकते कि हाँ, वो भी कब कह सकते हैं, और तीन की सत्ता है दर्शन होने की, तो कहेंगे हाँ ये शादी मिथ्या दृष्टि है ना। अब जो ऐसा शादी मिथ्या दृष्टि और लंबा काल चला गया संख्यात वर्ष, उसकी उद्वेलना होगी दोनों की, और एक मिथ्या तो प्रकृति है, तो वो अवधि ज्ञानी भी वहाँ ऐसा नहीं डायरेक्ट कह सकेंगे। हाँ, वो बहुत पहले के जानने वाले कोई अवधि ज्ञानी होगी, हाँ इसने पहले समित तो प्राप्त किया था, पर उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम क्या है, अभी कहाँ से आए, अभी हमने पहले कहाँ कहाँ काल बिताया था, हम कौन से भाव से मरकर आए, उसको जानने से क्या है। हम विदिशा गए थे ना, वहाँ किसी महिला ने प्रश्न किया कि आजकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि वो ऐसे पहले के बहुत सारे उसको याद कर। उन्होंने बोला इस एक शरीर के साथ इतनी आत्मबुद्धि है, वो नहीं छूट रही है। आप इसके पहले ये भाव में था, उसके पहले वो क्या है, वो शरीर से तो आत्मबुद्धि थी, तभी तो यहाँ मिथ्या तो में जन्म लिया है। पंचम काल में पुरुष हो या स्त्री हो, मिथ्या तो के साथ जन्मा है। अभी तो हम इस शरीर के साथ भी हमको नाता छोड़ना है, उसके बिना तो अपना सम्मिलित तो होने वाला नहीं है, तो उससे क्या लेना देना। यानी मिथ्या तो गुणस्थान चल रहा है, ऐसा अगर निर्णय हो जाए तो उसमें से, और ये सारा हम विस्तार से जानते हैं कि कौन से पर्याय में हमने जन्म मरण करके हम आए हैं अभी यहाँ पर, तो उसका कार्य क्या है, अभी करने योग्य कार्य क्या रहा उसके लिए, अपने स्वरूप की पहचान करना है। स्वरूप की पहचान यानी अपने शुद्धात्मा की पहचान, जिस रूप से अध्यात्म की भाषा में सब बातें हो रही है, गुरुदेव ने इतना समझाया है, तो उसको समझेंगे तो सम्यक दर्शन तैयार है ना, हाथ जोड़ के आपके सामने। वो जाएगा कहाँ, आपकी पर्याय निश्चित है तो आने से रहा, उसकी भी राह देखने की जरूरत नहीं है। ये सारी विधि बताई है अभी गुरुदेव के हर प्रवचन में कितनी बार बात आती है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि है या सादी मिथ्या, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो गए भव में बहुत काल नहीं बीता है मिथ्या तो में आकर, उसके दो करण में ही वो वेदक समय दृष्टि हो सकता है, सादी मिथ्या दृष्टि है तो समय तो पा जाओ, तो मिथ्या दृष्टि सादी है या अनादि है कोई डिफरेंस नहीं पड़ता उसमें।
फाइल बंद होता है, स्टार्ट करें तो
फाइल बंद होता है नहीं, ऐसा कोई कोई अपराध होता है, किसी ने कुछ खून किया, कोई दरोड़ा किया, जो कुछ होता है, तो उसको जो अपराधी नहीं मिलता है बहुत लंबे काल तक, तो पुलिस क्या करते हैं, केस बंद कर देते, उसकी फाइल बंद करते हैं, ढूंढना बंद कर देते हैं। तो ये मिथ्या दृष्टि है, अपने को सम्य दृष्टि मान के बैठा है, तो क्या हुआ उसकी फाइल बंद हो गई, उसके सारे प्रयत्न रुक जाएंगे, क्योंकि उसने मान लिया ना अपने को मिथ्या दृष्टि होते हुए सम्यक तो मान लिया है, तो निर्णय के प्रति क्यों अधिक प्रयत्न आ जाएगा। ये प्रश्न ऐसा है कि गाथा 17 में, 17 गाथा निकालो, यहाँ लिखा है अंतराय को अघाति कर्मवत, पेज 57 है। अंतराय को लास्ट में क्यों रखा ये प्रश्न था, क्योंकि अभी क्रम कैसे था, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय फिर मोहनीय फिर आयु नाम गोत्र फिर लास्ट में अंतराय को रखा, तो वहां लिखा था अंतराय कर्म घाती कर्म है वो तो निश्चित है, तथापि अघाती कर्मवत है, यानी जो ज्ञान और दर्शन का घात होता है या उसके जो मोनी में जो सम्यक्त्व का घात होता है, ऐसा मुख्य घात नहीं हो रहा है इसलिए उसको निग्लिजिबल कह दिया। समस्त जीव के गुणों का घात करने के लिए समर्थ नहीं, जीव के समस्त गुणों का घात नहीं हो रहा है, कुछ गुणों में उसका निमित्त बन रहा है, घात भी वैसा नहीं हो रहा है, केवल उसमें अंतराय यानी कुछ विघ्न रूप हो रहा है, इसलिए उसको अघाती कर्मवत कह दिया। और क्या कहा, नाम गोत्र वेदनी इन तीन कर्मों के निमित्त से यह है, उसके निमित्त से यह है, उसका अर्थ क्या है, जैसे वेदनी में जो सुख दुख वगैरह मिलता है, अभी उस सुख में कुछ लाभ होना है उसका, उसमें अंतर आया गया, उसमें विघ्न हो गया, इस तरह से उसका अर्थ लगा सकते हैं। जो साता साता है उस रूप उसको अर्थ लगे, उसके उसका उसमें निमित्त बन सकता है, उसके उदय का निमित्त बनता है, इसलिए इसको लास्ट में रखा।
इंद्रिय जनित सुख जो है साता, इसमें साता का उदय है, अभी उसमें जिसका अंतराय कर्म का उदय होगा तो इंद्रिय जनित सुख से वंचित रहता है, तो इसके अंदर वो आपस में
नहीं, इंद्रिय सुख में वो चल रहा था, उसमें कोई बाधा आ गई ऐसा हम कह सकते हैं, पर ये बाधा किसमें, वो सुख दुख में बाधा ऐसा नहीं, दान लाभ भोग उपभोग भी है इसमें लेते हैं, उसमें लाभ में हम ले सकते हैं उसका, कोई लाभ होना था उसमें उसकी बाधा। एक्चुअली दृष्टांत हम बाहरी उदाहरण देते हैं, कैसे कि हमें बैंक से अब कुछ आज मिलना था, हमारा पैसा हमें मिलना था और हड़ताल हो गई बैंक, तो क्या कहेंगे, आपके लाभांतर आया उसका उदय हुआ, ये कहने की समझाने की पद्धति। तो दान लोभ लाभ भोग उपभोग वीर ये तो जीव के गुण है, क्योंकि एक शायिक दान शायिक लाभ वगैरह होता है, तो उनको कौन सा दान और लाभ मिलता होगा, तो अपने ही अपने को ही सुख का दान, अपने को ही सुख का लाभ, इस तरह से उसका अर्थ करते हैं, इसलिए उसको मुख्य नहीं है करके उसको लास्ट में रखा है।
अब ये पांच प्रकृति तो वर्तमान में जीव को एक का क्षोभ होता है, बाकी का उदय होता है, इस प्रकार की इसमें क्या करना
है, उसमें क्षोभ ही रहता है उसका
सबका,
हाँ
पांचों का क्षोभ,
पांचों का क्षोभ,
तो फिर विवक्षित प्रकृति का उदय आया ऐसे,
वो जीव के पांच गुण है ना, अलग अलग पांच गुण है उसमें उसका क्षोभ,
तो पूरा भोगता नहीं है ऐसा ही हम लोग
क्या,
जैसे कि पांच गुण है तो इसको मतलब इसको घात करने वाली ये पांच प्रकृति भाव से,
देखो जैसे वीर्य गुण है और वीर्य गुण पूरा प्रकट नहीं हो रहा है तो वीर्यांतराय का क्षोभ है कहेंगे, वो सर्वघाती देशघाती पूरा लगा लेना उसको, ऐसा हर एक कर्म में लगा लेना, पांचों में लगा लेना।
तो फिर हम शब्द प्रयोग करते हैं कि इस जाति का अंतराय कर्म का उदय आ गया, उपभोग अंतराय कर्म का उदय आया, तो फिर वहां पर विवक्षित बाधा कुछ पहुंचती और कुछ अव्यक्त है, ऐसा
नहीं, कुछ बाधा है उसको कुछ फल मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, इस तरह से लेना, यानी उसको मिलना था परंतु उसमें बाधा आ गई, इस तरह से। ये तो जो उदाहरण दिए जाते हैं तो बाह्य चीजों के लिए जाते हैं, हम वीर्य गुण के पुरुषार्थ पर्याय उस पर घटित करके देखो तो वो समझ में आ जाए, ऐसा ही दान लाभ भोग उपभोग ये जीव के गुण है, तो उसकी जो स्वभाव पर्याय पूर्ण रूप से क्षायिक रूप से जो है वैसे वो प्रकट नहीं हो रही, इतना उसका अर्थ लेना तो ही घटित होगा, नहीं तो बाह्य पदार्थों पर वो घटित नहीं कर सकते आप। ये प्रश्न नहीं है मगर हमारे हेमचंद जी भाई ने बताया है, ये जैसे आपने वो सब निक्षेप बताए ना, आप कहेंगे उसका नाम अभी मत निकालो, मैंने नाम स्थापना द्रव्य भाव वगैरह निक्षेप देखे थे, तो उसमें वो द्रव्य निक्षेप आगम और नवागम देखे थे और भाव में भी आगम और नवागम बताए थे, वैसे आपने बताया है ये समय सार गाथा 199 में भी आता है, नो आगम भाव नमस्कार प्रवचन सार, हाँ प्रवचन सार में नो आगम भाव नमस्कार करते हैं, तो ये नो आगम भाव नमस्कार क्या है, ये नमस्कार शब्द पर भी हम नाम स्थापना द्रव्य भाव लगा सकते हैं, हमने बच्चे का नाम नमस्कार रख दिया या किसी की चीज के नमस्कार, तो नाम निक्षेप हुआ, स्थापना निक्षेप में किसी चीज में ये नमस्कार हमने कह दिया ये नमस्कार है, तो उसको क्या कहेंगे, स्थापना नमस्कार। द्रव्य नमस्कार में वो फिर आगम नो आगम लगा लेना, नमस्कार संबंधी कोई आगम का ज्ञाता है उसको आगम, यानी उस जीव को कहेंगे, उसमें उपयुक्त तो नहीं है उसको कहेंगे आगम द्रव्य नमस्कार। नो आगम में फिर ज्ञायक शरीर वो जीव जो भविष्य काल में जानेगा वो, और तद व्यतिरिक्त में वो कर्म नो कर्म को ले लेगा। अब यहाँ क्या लिखा है, भाव भाव नमस्कार में, भाव नमस्कार में क्या लेना है, जीव उस संबंधी आगम भाव और नो आगम भाव, आगम भाव में नमस्कार संबंधी आगम का ज्ञाता उसको कहेंगे उसमें उपयोग वाला उसको कहेंगे आगम भाव नमस्कार, नो आगम भाव नमस्कार में क्या, वो जीव उस रूप परिणत है कौन सा, भाव नमस्कार रूप, हाँ यानी वो यहाँ तो ये बात बताए भाव्य भाव भाव भी वहां नहीं, वो डिफरेंस भी नहीं है, ध्येय और ध्याता ऐसा डिफरेंस भी नहीं है, यानी अपने आत्मा में पूर्ण रूप से लीन है ऐसा जीव लिया है उसको नो अगम भाव नमस्कार कह दिया। ये जो सारे जो निक्षेप है ना कोई भी विषय लो उस पर सारे ये विषय घट रहे हैं गठित करके। अब धवला पढ़ेंगे जो नया नया विषय आता है उस सब को पहले में पहले वहां पर छह छह निक्षेप लगाए, चार निक्षेप नहीं छह निक्षेप लगाए, द्रव्य नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे सब निक्षेप लगाते हैं। अभी अपना विषय आगे बढ़ेगा विच्छित्ति वाला। अघातिवत इसलिए कहा कि वो मुख्य नहीं है, यानी उसकी विवक्षा नहीं है ज्यादा। जैसे ज्ञान दर्शन सुख में जो निमित्तपना बनता है, जीव के जो राग द्वेष है जो मुख्य है, इसलिए उसकी बात पहले की और ये अंतराय को लास्ट में रखा है। विवक्षावश है बस, उसमें और कुछ नहीं। ये क्रम कहने का प्रयोजन क्या है इसकी यहाँ विशेषता है। अब अपना विषय चल रहा था बंद विच्छित्ति का, पेज नंबर 108 9 पर थे, 9 की बात पढ़ी थी। हमने पहले कुणस्थान में 16 प्रकृतियों की विच्छित्ति देखी बंद विच्छित्ति, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, पांचवे में 4, छठे में 6, सातवें में 1। यहाँ तक देखिए, अभी आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 110 पर आना है। आगे अपूर्व कर्म के 7 भागों में से 3 भागों का अंगीकार करके बंध की विच्छित्ति कहते हैं। देखो अपूर्व कर्म नाम का जो 8वां गुणस्थान है उसके 7 भाग करना। उसके पहले भाग में कुछ प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है, जिस 2 की निद्रा प्रचला की, फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में कोई बंध विच्छित्ति नहीं है, छठे में जितना बंध होता था उसमें से बंध विच्छित्ति कितने की होती, तो 30 प्रकृतियों की जो आगे नहीं बंधने वाली, और अंत में 8वें गुणस्थान के लास्ट तक 4 प्रकृतियां जो बनती थी वो वहां पर विच्छित्ति हो जाएगी, वो आगे 9वें गुणस्थान में नहीं बनेगी। ये उसका अर्थ है। अब उसकी चर्चा यहाँ देखते हैं कौन कौन सी है। 99 और 100 की टीका जो है ना 110 पेज पर, निवृत्ति अर्थात अपूर्वकरण गुणस्थान, क्योंकि 9वें गुणस्थान का नाम क्या है निवृत्ति, तो यहाँ इसको निवृत्ति कह दिया। उसके चढ़ने के काल में मरण से रहित ऐसे प्रथम भाग में क्या कहा, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले के 8वें के प्रथम भाग में मरण नहीं होता, और क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले के कौन से भाग में मरण नहीं होता क्षपक श्रेणी में मरण नहीं है। केवल ज्ञान लेके ही जाएगा जिसने आयु का बंध किया हो, ऐसा जीव क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। आयु का बंध किया तो उसका निर्भवन अब की है, यानी उसका मरण भी नहीं होगा, वो तो निर्वाण होगा अभी वो 14वें के बाद। तो यहाँ क्या कहते हैं, इसके जो 7 भाग किए हैं उसमें से पहले भाग को क्या कहता है कि यहाँ मरण नहीं होता, और वो पहला भाग किससे जाना जाता है, यहाँ निद्रा और प्रचला की बंधे की विच्छित्ति हो जाती है। देखो प्रथम भाग में निद्रा और प्रचला इन 2 की विच्छित्ति होती है, यानी ये 2 का बंध यहाँ है, दूसरे तीसरे आदि आगे के भागों में नहीं है। उसी प्रकार छठवें भाग के अंतिम समय में यहाँ 30 प्रकृतियों जो बंद रही थी उनकी विच्छित्ति कहने में आएगी। वो 30 प्रकृतियां इसको कहेंगे ना, ये पर्व संबंधी प्रकृतियां ऐसे भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ तक देवगति का बंध है और देवगति के साथ जो बंध योग्य प्रकृतियां हैं वो सब बंद रही थी। तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला उसको भी यहाँ पर लेना, आहार अभी बांधने वाला उसको भी यहाँ पर लेना। देखो ये प्रकृतियां गिनेंगे अभी, तीर्थंकर निर्माण शुभ विहायोगति पंचेंद्रिय जाति तेजस शरीर कारमान शरीर ये 2, आहार कंगोपांग ये 2, समचतुरस्य संस्थान देवगति देवगत्यानुकूली। अब जो देवगति बांधता है वो वैक्रियक शरीर को ही बांधेगा नियम से, वैक्रियक शरीर वैक्रियक अंगोपांग ये 4 यानी देवगति चतुष्क कह गया। वर्ण गंध रस स्पर्श ये 4, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास ये 4, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ सुभग सुस्वर और आदेय ये 9, इस तरह 30 प्रकृतियां विच्छित्ति रूप होती है। देखो देवगति का सामान्य से बंध होता है तो देवगति युत यानी देवगति को इंक्लूड करके 28 प्रकृतियों का तो मिनिमम बंध होता ही होता है। अब उसके साथ यहाँ तीर्थंकर को भी लिया है और आहारद्वीप को भी लिया है, यानी 21 प्रकृतियां देवगति संबंधी बन रही थी। उसमें से सिर्फ नाम कर्म की है ना, उसमें से तो 30 प्रकृतियों का बंध रुक गया। तो एक कौन सी प्रकृति है जिसका बंध चालू रहेगा? हाँ, यशस कीर्ति का बंध चालू है। यहाँ कौन कौन सी फिर पढ़ते देखो इसको। अभी यहाँ के ऑर्डर दीजिए, हम गति जाति इस तरह से देखेंगे। कौन सी गति बन रही है? देवगति, उसी की गत्यानुपूर्वी। तो देवगति के साथ कौन सी जाति बंधेगी? पंचेंद्रीय जाति। शरीर कौन सा बंधेगा? वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगों का। तेजस कारमा तो ध्रुव बंधी हो तो बंधेगी ही बंधेगी। आहारक आहारक अंगों का किसी के बंधे, परंतु किसी को बनती तो हम यहाँ इंक्लूड करते हैं। गति जाति शरीर बंधन हो ले लिया, वर्ण रस गंध स्पर्श हो जाता है, अग्र लघु उपघात परघात उच्छ्वास हो जाएगा, फिर त्रस बाधर पर्याप्त प्रत्येक वो भी हो जाएगी, वो स्थिर शुभ वो सब वो भी प्रकृतियां लेनी, ये सब यहाँ बंद। क्योंकि अस्थिर वगैरह जो अशुभ है वो तो पहले ही कट डाउन हो गई थी, छठे में कुछ गई थी, दूसरे में कुछ गई थी, तो यहाँ पर बंधने वाली में से इतनी 30 प्रकृतियों की बंधे की उचित हो जाती है। 31 बंध रही थी नाम कर्म की, उसमें से यशस कीर्ति का बंध चलता रहेगा ऊपर तक 10वें तक, और ये यहाँ इतनी 30 की उचित हो जाती है। अब 7वें भाग में हाथ से रहती भय जुगुप्सा, ये मोहिनी की जो यहाँ तक बनती थी, 8वें के 7वें भाग तक अंतिम समय तक बनती थी, इसके ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बंधेगी। इसे कहते हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, ये 4 प्रकृतियां बंध से विच्छित्ति रूप होती है। यानी 8वें गुणस्थान की याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है ना, पहले भाग में 2, लास्ट भाग में 4 और बीच में 30 जो विच्छित होने के बाद वो अबंध नहीं गिरेगी। हाँ, आपका ये प्रश्न है, एक ही गुणस्थान में उसको विच्छित्ति में और अबंध में हम नहीं गिनते थे, जैसे पहले गुणस्थान में 16 की विच्छित्ति कही तो उसको अबंध में तो 3 ही गिन रहे थे। इनका प्रश्न सही है, अभी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने 8वें गुणस्थान के 7 भाग कर दिए। पहले भाग में उसको अबंध नहीं गिना, पहले भाग में अबंध नहीं गिना, पहले भाग में विच्छित्ति है। आप उसके 7 अलग अलग भाग लिख दो, 8वें गुणस्थान के 7 अलग अलग भाग लिख दो, तो पहले भाग में विच्छित्ति कितनी है? 2 की। वहां अबंध में उसको नहीं गिना है, दूसरे भाग में उसको अबंध गिना है। क्योंकि एक गुणस्थान के हमने डिविजन किए ना, इसलिए आ रहे हैं। क्योंकि वो डिविजन क्यों है? क्योंकि 8वें गुणस्थान में जो इंटर हुआ है अभी, वो तो ऊपर चढ़ने वाला जी, उसकी बात है।
बाकी गुणस्थानों में डिविजन नहीं है,
वैसे डिविजन नहीं है। 9वें में ही पर उसके पूर्व में नहीं है ना,
पहले से 7 तक नहीं।
9वें गुणस्थान भी क्रम से कहेंगे, एक एक प्रकृति को एक एक के बाद वो बंध विच्छित कहेंगे, फिर उसमें अबंध वाली बढ़ती चली जाएगी। एक होता है सामान्य कथन और एक होता है सूक्ष्मतर से कथन, उसके भाग करके हम देखेंगे तो उसमें बंध और अबंध विच्छित वो अलग अलग कहनी पड़ी। 7 भाग अलग अलग करो, फिर उसमें बंध अबंध गिना, तो ये बात हो सकती।
सामान्य से कहेंगे तो
इस तरह से होता है, यानी पहले भाग में किसका किसकी उचित हुई? निद्रा और प्रज्वला। 6ठे भाग में 30 प्रकृतियों और अंत में 4, हास्य रति भय और जुगुप्सा। ये समझ में है ना? और फिर सबको मिलकर अबंध में गिनना है तो वो संपनवे में अबंध गिनेगी, परंतु एक एक भाग में अगर अबंध गिनना है तो जिसकी जिसकी विच्छित्ति हो जाएगी उसको उसको अबंध भी गिनते चले जाएंगे। हाँ देखो, ये हमने 8वें गुणस्थान की बात देखी थी, अब 9वें गुणस्थान की बात देखते हैं। उसी 110 पेज पर नीचे के 2 लाइन, 9वें गुणस्थान के 5 भेद किए यहाँ पर। ये पांच भेद किसकी अपेक्षा हम कर रहे हैं यहाँ पर? बंधन की अपेक्षा। अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग भेद हो सकते
हैं।
अभी ये पांच डिवीजन की देखो, जब जीव नवे गुण स्थान में एंटर हुआ है तो उसके अभी मोहनीय में क्या क्या बाकी रह गया है? उदय रूप की बात करते हैं। उदय किसका है यहाँ पर? एक वेद का उदय है, एक वेद का उदय है, और एक कोई कषाय का संज्वलन का एक का उदय। उदय रूप दो ही प्रकृतियां है। बंद किसका हो रहा है? वेद का, किसी एक वेद का नहीं, पुरुष वेद का बंद हो रहा है, और संज्वलन चार का बंद हो रहा है। यानी नवे में आते ही, क्योंकि हाथ से रति सब बंद अभी रुक गए ना, अभी क्या बन रहे हैं मोहनी में? मोहनी में क्या बन रहा है? पुरुष वेद और संज्वलन चार, एक पुरुष वेद और संज्वलन चार। अभी इन्हीं की बंध विच्छित्ति होने वाली है यहाँ पर। बाकी जो आठवें में जिनका बंध रुक गया उनका ही बंध होने का कोई सवाल नहीं यहाँ पर। परंतु यहाँ पर ज्ञानावरण बन रहा है कि नहीं बन रहा? दर्शनावरण भी बन रहा है। जो बंध विच्छित्ति नहीं हो रही वो सब यहाँ बन रहे हैं, परंतु उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये जो पांच भेद की है किस अपेक्षा से? अभी यहाँ जो विच्छित्ति होने वाली प्रकृति है उसकी अपेक्षा। यहाँ मोहनीय का ही बंध रुकने वाला है, बाकी जो बंध चल रहा है वही चलेगा ऊपर, नवे गुण स्थान में चलेगा, दसवें में चलेगा। हाँ, तो यहाँ मोहनीय का पहले किसका बंध हो रहा था? तो पांचों का, एक पुरुष वेद और चार संज्वलन। अब वेद का उदय मिलता है तो वेद का बंध भी मिल जाता है, तो कितने का बंध हो जाएगा? चार का। यानी पुरुष वेद की बंध की विच्छित्ति हो गई। अब बंध कितना किसका हो रहा है? क्रोध मान मायालोभ, संज्वलन क्रोध मान मायालोभ। उसके बाद क्या है? वो क्रोध वेदक काल भी समाप्त हो गया, तो अभी यानी क्रोध का बंधन नहीं होगा, मान माया लोभ का बंधन होगा। फिर मान वेदक काल के बाद माया और लोभ का संज्वलन का बंधन, फिर माया की भी बंध विच्छित्ति हो जाएगी। लोभ का बंध है कहां तक? नवे गुण स्थान के अंत तक। दसवें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है, बंध मोहनीय का नहीं। इसलिए नवे गुण स्थान में पांच प्रकृतियां लिखी है वो एक साथ नहीं विच्छित्ति हो गई। पहले भाग में पुरुष वेद गया, दूसरे भाग में क्रोध विच्छित्ति हो गई, वहां बंध है परंतु उसकी विच्छित्ति हुई। तीसरे भाग में मान की विच्छित्ति, चौथे भाग में माया की विच्छित्ति, पांचवें भाग में लोभ की विच्छित्ति। उपशम है बंधे की बात, बंधे की विच्छित्ति की बात है। यहाँ बंधे की विच्छित्ति की बात है। जब सत्व की विच्छित्ति की बात आएगी तो क्षपक श्रेणी में उसकी बात करेंगे। वहां कहां किसका क्षय होता है उसकी अपेक्षा से नवे गुण स्थान के बहुत सारे वेद करेंगे, नौ वेद करेंगे, चिंता मत करना। अभी उपशम श्रेणी में चली सत्ता पड़ी है, यहाँ एक भी प्रकृति का क्षय नहीं हुआ है। उदय मिट गए हैं और उस अनुसार बंध भी कुछ कुछ मिट गए। ये बात यहाँ चल रही। तो नवे गुण स्थान में विच्छित्ति कितनी है? पांच की। अनुक्रम से एक 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 इसमें उसकी बंध विच्छित्ति हो जाए। ये ख्याल में है बात? अभी आगे बढ़ते हैं।
संज्वलन का लोभ पांचवें भाग में गया,
संज्वलन लोभ का बंध रुक गया, अभी पांचवें भाग तक बंध है। जो नवे गुण स्थान का अंतिम समय तक लोभ का बंध है, बंध है। उदय भी था नवे के अंत तक, बादर लोभ का उदय था, बादर लोभ उसको कहते। अब लोभ का उदय था ना, अब उसने नवे गुण स्थान के लास्ट लास्ट में क्या किया? वो लोभ को सूक्ष्म कर दिया, उसका अनुभव घटाया। उसका उदय कब होगा? दसवें में होगा। परंतु सूक्ष्म लोभ के उदय में दोबारा लोभ का बंधन नहीं होगा। उसके लिए उदाहरण देते हैं ना, जैसे एक गुण वाला जो है वो तीन गुण वाले के साथ नहीं बनता है परमाणु। मिनिमम जो उसका जो बताए ना स्निग्धांश रूपांश, हाँ, तो जगन्या ने जो एक गुण वाला कहते, परंतु एक उसमें अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, फिर भी उसको एक गुण कहते हैं जो मिनिमम है। वो उसके दो के डिफरेंस वो तीन वाला है, उसके साथ नहीं बंधेगा। ऐसे सूक्ष्म लोभ से नया मोहनी का बंधन नहीं होगा, उन सूक्ष्म लोक के उदय में ज्ञानावरण दर्शनावरण वो अंतराय नाम गोत्र सब बंद रहे वहां पर वेदनीय दसवें में बंद रहे। दसवें गुण स्थान में लोक का या कोई मोहिनी का कोई बंधन नहीं है, परंतु दसवें गुण स्थान में अन्य छह प्रकृतियों का बंध हो रहा है, ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की चार, अंतराय की पांच, वो सब। नाम की कौन सी बंधेगी? एक यशस कीर्ति, गोत्र की एक उच्च गोत्र, वेदनी की एक साता वेदनी, इनका बंधन चल रहा है। वो दसवें के अंत में जाकर उसकी विक्षिप्ति हो जाएगी सोलह की, और ग्यारहवें में एकमात्र वेदनीय बंधेगा साता वेदना, ग्यारहवें में, बारहवें में और तेरहवें में। देखो ये यहां से पढ़ेंगे, नीचे के 110 में नीचे की दो लाइन, अनिवृत्ति कर्म के पांच भागों में से पांच भाग हमने यहां बंध की अपेक्षा से पांच भाग किए, उसकी बंध विच्छित्ति की अपेक्षा से। इसमें उदय का भी नियम लगा होता है, उसमें बंध विच्छित्ति लगाए। पहले भाग में पुरुष वेद, दूसरे भाग में संज्वलन क्रोध, तीसरे भाग में संज्वलन मान, चौथे भाग में संज्वलन माया, पांचवें भाग में संज्वलन लोभ। इस तरह इनकी क्रम से विच्छित्ति होती है। ये आठवें गुण स्थान में भी कुछ क्रम बताया, यहाँ पर भी कुछ क्रम बताया, इसलिए यहाँ बंध अबंध में वो एक एक भाग में अलग से हम कह सकते हैं। पुनश्च सूक्ष्म संप्रदाय के अंतिम समय में मति ज्ञानावरण आदि पांच ज्ञानावरण, दानांतराय आदि पांच अंतराय, चक्षु दर्शनावरण आदि चार दर्शनावरण, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र, इन सोलह प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। दसवें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां बंध रही थी? सत्रह। उसमें से सोलह का बंध रुक जाएगा, एक साता वेदनी का बंध ग्यारहवें में भी होगा, बारहवें में जाने वाले को उसको भी होगा, तेरहवें में भी होता है, इसलिए सोलह की विच्छित्ति कही यहां पर। सत्रह बंधती है, उसमें से सोलह की विच्छित्ति हो जाएगी, एक रह जाएगी वो आगे के गुणस्थानों में बंधेगी। तेरहवें तक बनती है ना, साता वेदनी का बंध तेरहवें तक है, चौदहवें में नहीं है, तो उसकी विच्छित्ति कहां पर कहेंगे? तेरहवें। यहां गाथा में अंत ऐसा कहा है, सो अंत में रखा हुआ दीपक जैसे वहां सर्वत्र प्रकाश करता है, वैसे ये जितनी विच्छित्ति कही वे सब अंतिम समय में जानना, अंतिम समय में नहीं, उस गुणस्थान में बनती है बस। ऐसा अंतिम समय कोई गिरने वाला है, कोई ऊपर चढ़ने वाला है, अंतिम समय ने ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बनती, उस गुणस्थान में बनती है, इतना ही उसका अर्थ है। अब 102 की टीका, उपशांत मोह यानी ग्यारहवा गुणस्थान, क्षीण मोह बारहवा, संयोग के लिए तेरहवा गुणस्थान, इनमें एक समय की स्थिति सहित, यानी वो कोई स्थिति का ही बंध नहीं है, फिर भी उसका एक समय, क्योंकि वो जो समय है वो उदय रूप ही है, उदय रूप ही होते हुए निकल ही जाता है। हाँ, तो एक ही समय की स्थिति सहित एक साता वेदनीय ही का बंध है, वह योग के निमित्त से है। तो पहले दसवें गुण स्थान तक किससे किसके निमित्त से हो रहा है? योग और कषाय दोनों, इसलिए प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध सब कुछ हो रहा था। अब यहाँ ना स्थिति बंधेगी ना अनुभाग बंधेगा, क्योंकि कषाय नहीं है पर योग है, तो प्रदेशों का ग्रहण है और वो जा भी रहे, क्योंकि कषाय का वहां अभाव है। पुनश्च अयोग के लिए, अयोग का अर्थ अयोग, अब यहाँ योग रुक गया है, तो योग मिट गया है, यानी क्या हुआ? योग क्यों हो रहा था? हाँ, शरीर नाम कर्म के उदय में हो रहा था, तो अयोगी में क्यों नहीं हो रहा है? आप कहो ना, शरीर नाम कर्म का उदय हो गया, उसका उदय तेरहवें के अंत तक है, तेज शरीर नाम कर्म, कारमान शरीर नाम कर्म, अवतारी शरीर नाम कर्म, ये सारे उसके उदय रुक जाते हैं। उदय रुक जाएगी तो उसका कार्य क्या है? परमाणु का ग्रहण, वो भी रुक जाता है। योग यानी जो भाव योग को ही यहाँ लेना है, तो उसके निमित्त से द्रव्य योग होता है, तो वो यहाँ रुक जाता है, तो निष्कंप अवस्था परिपूर्ण अयोगी हो गया। यानी पूर्ण रूप से योग मिट गया यहाँ पर। तो किस गुण का ये परिणाम था? योग विभाव के स्वभाव है। योग जो है वो कौन से गुण का परिणाम था? योग गुण। तभी योग गुण क्या कर रहा है? निष्कंप जिसको कहेंगे, योग रहित हो गया। यानी योग तो योग रहित हो जाएगा कि योग तो गुण है ना, उसका परिणाम तो चलेगा। तो उसको योग क्यों कहते हैं, योगी क्यों कहते हैं? ऐसा प्रश्न हमको वहां पर मायामी में पूछा था। अमेरिका गए थे ना हम वहां पर, तो हमने उन भाई से पूछा आपको ब्लड प्रेशर है क्या? उनको ये क्या हुआ है इसको, डॉक्टर को सबको पूछने लगे आपको ब्लड प्रेशर है क्या? आपको है बेटा? है आपको बीमारी है ब्लड प्रेशर? अमृत भाई, तो जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो क्या कहते हैं? हमको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हमको ब्लड प्रेशर है कहता है। अगर आप कहेंगे हमको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जो नॉर्मल नहीं है तो कहेंगे हमको ब्लड प्रेशर है। ऐसे नॉर्मल क्या है योग के लिए? निष्कंप अवस्था। वो नहीं है तो क्या कहेंगे? योग। समझ में नहीं बात?
अपूर्व गुण स्थान के अंदर हमने देखा तो तेजस शरीर, कारमन शरीर और वैकृत शरीर नाम कर्मा का तो वहाँ पर अटक गया।
आपका प्रश्न
है,
सुनने सुनने दो। आपका प्रश्न पूछते पूछते उनको उत्तर मिल गया स्वयं से। कि हमने अभी अभी बंद विच्छित्ति में देखा कि तेजस शरीर नाम कर्मा, कारमन शरीर नाम कर्मा वगैरह वगैरह की बंदे की विच्छित्ति हुई वहाँ वैकृत शरीर नाम कर्म की, कहा आठवें गुण स्थान। और आप यहाँ कह रहे हो कि तेरहवें गुण स्थान तक उसका योग चल रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि उदय की विच्छित्ति बात अलग है, बंधे की विच्छित्ति बात अलग है। नया बंधना तो रुक गया पर सत्ता में पड़ा है उसका उदय भी चल रहा है। उसका उदय तो मिल गया तेरहवें के लिए, पर सत्ता में से नष्ट हो जाएगा और लास्ट में जाके नहीं
समझे।
सत्व चौदहवें तक है, तेरहवें गुण स्थान में कितने प्रकृतियों का क्षय हो जाएगा? एक भी प्रकृति का नहीं। तेरहवें में किसी का क्षय नहीं होता है, उदय मिट जाता है। तेरहवें से चौदहवें में जाते समय किसी भी एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होता है, वो जाके उपांत समय में 72 और 13 चला जाएगा तो लास्ट में चला जाएगा। तेरहवें वाला कोई क्षय का कार्य नहीं करता है। क्षय का कार्य होता है तो मेजोरिटी तो नवे गुण स्थान में होता है क्षय का। हाँ, फिर वो बारहवें में कुछ हो जाता है, चिंगाते चले जाते हैं और फिर चौदहवें में चले जाते हैं। ये तो उदय कहाँ कौन सा मिटता है, सत्व कहाँ कौन सा मिटता है, ये सारे इससे तो हमें गुण स्थान में क्लियर हो जाते हैं सारे। हाँ, क्या प्रश्न है चेतना? हाँ होती है। हाँ, तेरहवे में साता की बताई ना, 001। हाँ, मैंने क्या बताया? तेरहवे में एक का भी क्षय नहीं होता, एक का सत्व की विच्छित्ति कही मैंने। घोटाला होता है। आपका प्रश्न मैं रिपीट करती हूँ, पूरा नहीं समझा, परंतु आप कहेंगे एक प्रश्न है भाव योग द्रव्य योग को समझाएं और दूसरे से उसका कोई संबंध नहीं था। सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नारकी लड़ रहे। हाँ, लड़ रहे क्योंकि लड़ना उनका स्वाभाविक है वहाँ पर उनके। हाँ, उनका ऐसा प्रश्न है कि जो उनके 25 प्रकृतियां और ये 16 प्रकृतियां सब लेना, 41 प्रकृतियों का तो आश्रय रुक गया, उतना संवर हो गया, बंध विच्छित्ति में नहीं, उतना बंध नहीं हो रहा है, बंध रुक गया है, यानी उतना उनको संवर हो गया है। तभी वो जीव और जो मिथ्या दृष्टि जीव जो लड़ रहा है, आपस में दोनों ही लड़ रहे हैं, तभी उनके किस में क्या अंतर है पूछ रहे हैं। योग यानी आप योग यानी जो हमारे योग की परिभाषा है उस योग की बात कर रहे हैं कि उनका आपस में जो प्रवृत्ति रूप बात कर रहे हैं प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं
वही क्रिया प्रवृत्ति
भाव योग द्रव्य योग उसको नहीं कहते। देखो योग बात अलग है वो तो आत्म प्रदेशों की चंचलता उसको भी वो द्रव्य योग और जो आत्मा के प्रदेशों में कर्म और नो कर्म ग्रहण करने की शक्ति है वो भाव योग है। वो भाव योग और द्रव्य योग ये इंद्रिय के विषय नहीं है वो आपको नहीं समझ में आ जाएगी। और जो उनकी योग के निमित्त से बाह्य प्रवृत्ति जो है हम जो कहते हैं नमो योग त्रियोग समारी की वो तो हम बाह्य प्रवृत्ति की बात करें। प्रवृत्ति बात अलग है योग बात अलग है। वही प्रवृत्ति होते हुए भी योग पलट जाता है नहीं समझे। ये बहुत भक्ति भाव से पूजा गा रहे हैं हम और वो पूजा तो क्योंकि हमारी याद है ना तो गाते रहते हैं और वो सुनने वाला भी भाव विभोर होकर सुनता है और इसको क्या क्या होता है वहाँ कहाँ कहाँ घूम कर आता है उसके वचन योग से मनोयोग से काय योग वो चेंज होता रहता है क्योंकि योग का जो प्रवर्तन का है वो बहुत छोटा काल है। योग का मनोयोग वचन योग कायोग चेंज होते रहते हैं परंतु उसकी प्रवृत्ति जो चालू हो गई है वो तो चलती रहती है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम देखो भी हम सोच भी रहे हम बोल भी रहे ये तो हम तो कुछ नहीं कर रहे इसमें से परंतु ये प्रवृत्ति एक साथ होते हुए दिख रही है परंतु उसमें योग तो कितने बार पलटना हो जाता है। तो ये प्रवृत्ति जो दिख रही है वो जो द्विधी बात है और योगों का जो आत्म प्रदेशों का जो कुछ अंदर हो रहा है कंपन हो या उसकी जो भाव योग हो वो बात नहीं है वो इंद्रिय गम्य नहीं है। भाव योग जो बंध का कारण है वो सभी आत्म प्रदेशों में होता है और द्रव्य योग है यानी जो कंपन है वो क्यों होता है भाव योग के निमित्त से ही होता है परंतु ये जरूरी नहीं सब में होगा। जो आता है ना वो बीच वाले मध्य प्रदेश जो स्थित होते हैं आज जो है स्थित है वो वही के वही रहते हैं कब शरीरधारी अवस्था में विग्रह गति में आठों वो भी चलित है सारे चलित है। संसार अवस्था में तीन प्रकार के होते हैं देहधारी अवस्था में बीच के आठ स्थित है अबंध ऐसा नहीं कहा स्थित है और बाकी जो घूम रहे में उसकी उसकी प्रदेशों की ऑर्डर नहीं चेंज होती है सेंटर कायम रहते हुए प्रदेश कैसे भी होगा भी ये तो सिंगल लेयर वाला है ऐसा धन स्वरूप आत्मा होगा तो उसके प्रदेशों की ऑर्डर नहीं चेंज होगी। जैसे हमने वस्त्र हाथ में रुमाल पकड़ा तो उसके धागों की पोजीशन नहीं चेंज होगी परंतु उसको हम कैसा भी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं ना ऐसे उसमें हो सकता है परंतु उसका अर्थ वो बीच में बंध नहीं ऐसा उसका अर्थ नहीं है। योग सर्वत्र है कर्म का बंध सर्वत्र हो रहा है वहां कोई बंध से रहित प्रदेश नहीं है क्योंकि ये कहां बात आती है कि प्रश्न ऐसा पूछा है धवला ने कि जो कर्म वहां पर है वेदना का है उसको ये कर्म घूमते हैं कि नहीं घूमते जीव के प्रदेश घूम रहे हैं तो उसमें साथ कर्म घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे ये प्रश्न है। तो कहते घूमने वाले प्रदेशों में कर्म है वो भी घूमेंगे और नहीं घूमने वाले प्रदेशों में कर्म है वो वहीं पर स्थित रहेंगे इतना ही सी बात है पर कर्म नहीं होने की बात ही नहीं कहीं पर। जो प्रदेश स्थित है वहां का कर्म भी वहीं पर स्थित है वो तब तक वो बहुधारा में है तब तक विग्रह गति में सारे ही चलायमान हो रहे उसमें सारे में ही वो कर्म भी घूम रहे उसके साथ क्योंकि वो कर्म और जीवों का ऐसा जो संश्लेष संबंध हुआ है तो उन प्रदेशों में भी बंध तो है ही है बंध से रहित कोई भी प्रदेश नहीं है क्योंकि इसके लिए योग स्थान को जानना भी जरूरी है। तो योग स्थान क्या होता है अभी उसके लिए जैसे हमने कर्मों में वर्ग वर्गना स्पर्धक अग्नि जो हम देखते हैं कर्मों में ऐसे योग को भी समझाने के लिए जीव के प्रदेश कितने हैं जितने लोक में प्रदेश है उतने जीव के अपने प्रदेश है उसमें कोई बढ़ोतरी कम होता है कि नहीं होता नहीं होता। तो उसमें है जिसमें जो मिनिमम योग है ऐसे प्रदेशों की एक लाइन बताएंगे उसको हम वर्गना कहेंगे जिनमें थोड़ा अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है योगों का उसको हम दूसरी वर्गना कहेंगे जिसमें और थोड़ा है उसको तीसरी वर्गना कहेंगे। इस तरह से वो जघन्य से लेकर ऊपर तक असंख्यात ऐसे वर्गनाएं होती है तो उसका नाम है वर्ग वर्गना स्वर्धक वो गुणहानि वगैरह, वो हम देखेंगे बाद में उसको। तो इसमें भी जो मिनिमम अनुभाग वाले है उसमें भी जो कुछ यथा योग्य वहां पर अनुभाग है उसका, योग की शक्ति है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं कि जो जीरो शक्ति वाला है, सारे असंख्यात प्रदेशों में वो रचना बताई, नहीं तो उसको अलग से बताते हैं। क्योंकि जहां एक समय का भी बात शास्त्र में बताई जाती है, एक प्रदेश की भी बात अलग से बताते, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो बंध से रहित हो, ये उसका अर्थ है। स्थित और अस्थित का अलग अर्थ होता है, बंध का अर्थ अलग है। कि जो घूम नहीं रहे थे उसके कर्म भी वहां पर स्थित है, और जो प्रदेश घूम रहे हैं उसके साथ कर्म भी घूम रहे। किसमें घूम रहे? ये शरीर से जुड़े औदारिक शरीर है, और अंदर जीव के प्रदेश और कर्म एक साथ घूम रहे, ऐसा उसका अर्थ है। उसमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि परस्पंद भले वो एक साथ दिख रहा है, यानी योगी नारी भी हो क्यों ना हो, उसकी क्रियाएं भी एक जैसी क्यों नहीं, उसके जो अभिप्राय में जमीन आसमान का फर्क है। गुरुदेव की भाषा में बोल रहा है, वो राग का राग नहीं है, राग का स्वामित्व नहीं। उसके जो दूसरे के प्रति नफरत के भाव आ रहे हैं, हम राग के भाव छोड़ दो, द्वेष के भाव करेंगे, तो कि करने योग्य है या इससे मेरा भला होगा, ऐसा कुछ उसके है क्या नहीं, तो उसके हो रहा है, उसका भी ज्ञाता होकर उसको हो रहा है, करता तो है नहीं उसका। यानी ये अभिप्राय में तो अंतर है ही है, क्रियाएं एक सर की होने पर भी अभिप्राय में महान अंतर होता है। और ये समय दृष्टि, अभी वो सातवें नरक का जो समय दृष्टि होगा उसकी बाह्य क्रिया कैसी होगी, और समय दृष्टि, और नवे ग्रह का मिथ्या दृष्टि है। अभी जाने दो ना, अभी मनुष्य में जो नवे ग्रह जाने वाला वैसे कोई द्रव्यलिंगी मिराज है, उनके कैसे शुक्ल दिशा के परिणाम बाह्य में कितना क्या है, यानी हम बाह्य क्रियाओं से अंदाजा नहीं लगा सकते उसके अंतरंग की बात। इसके लिए आगम के अभ्यास से हम उसका, आगम से ही हमको उसको देखना है, ये हमारे दायरे ज्ञान का विषय नहीं है, आगम से हम इसका निर्णय कर सकते। शुक्ल लेखा वाला है
तो भी उसमें,
हाँ तो ना सातवें नरक का नारकी समय दृष्टि है कृष्ण लेखा वाला, और वहाँ ग्रवेक वाला जो है देव शुक्ल लेखा वाला, क्योंकि उनकी एक शुक्ल लेखा ही होते थ्रू आउट लाइफ टाइम, और उनके बाह्य आचरण में भी कितना डिफरेंस है, फिर भी अभिप्राय में क्या है ख्याल में आती है ना। तो हम तो अंदाजा बाहर की बातें देखकर ही देख रहे हैं। अभी सौदर महीने आप इंद्र होते हुए थे ना, हाँ तो पूरा सजधज कर आते थे ना, तो इंद्र यहाँ आएंगे समाचरण में तो पूरे अपने छाड़वाड़ के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। तो कोई समय दृष्टि वो ठाठवाड़ से है, और कोई समय दृष्टि ऐसा है कि उसने बस बाह्य को ये त्याग कर दिया है, अभी वो उसका गुणस्थान भले चौथा है पर बाह्य में त्याग कर दिया, ऐसा भी हो सकता है, इससे जरूरी नहीं कि उसको नहीं कर सकता, तो दिखने में कौन भला दिख रहा है। वो तो तांडव नृत्य आकर करता है। सौधर्म इंद्र की बात करें ना,
सौधर्म
वो पहला स्वर्ग का नाम है सौधर्म देवलोक, यानी स्वर्ग, वहां के इंद्र का नाम है सौधर्म इंद्र, वो पहले स्वर्ग का है। दूसरे स्वर्ग का नाम ईशान, वहां के इंद्र का भी नाम ईशान, वो पहले ही स्वर्ग का है। भरत भूमि में वो मुखिया है ना, व्यवस्थापक है पंच कल्याणक के, और ऐरावत में ईशान इंद्र है, और विदेह में वो सनत कुमार है, और
योग के संबंध में वो समय सार में जो कर्ता कर्म अधिकार में योग और उपयोग कुंभा के योग और उपयोग से फिर बताते थे, फिर उधर योग क्या लेना और अर्थ क्या लेना।
देखो योग कुमार के योग और उपयोग को लिया है, योग का कहीं कहीं अर्थ तो जीव का उपयोग लगा है उसको भी योग में लेते हैं, कहीं कहीं पर वो योग की बात आती है, मैं आपको बताऊंगी। इन्हें योग किसको कहेंगे उसके बारे में भी बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। ये धवला की बात है, 12वीं पुस्तक पेज नंबर 367। मन वचन एवं काय संबंधी क्रिया की उत्पत्ति में जो जीव का उपयोग होता है वह योग है, वहां इसको योग कहा, और वह कर्मबंध का कारण है, उसको भी कर्मबंध के कारण मिले, परंतु वह थोड़े से जीव प्रदेशों में नहीं हो सकता। यानी थोड़े से जीव प्रदेशों में योग है, बाकी में नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये वहां का क्योंकि एक जीव में प्रवृत्ति हुए उक्त योग की थोड़े से ही अवयवों में प्रवृत्ति मानने में विरोध आता है। यानी अगर योग कहेंगे तो सर्वात्मक प्रदेशों में होगा, किसी में हो किसी में न हो ये बात बन ही नहीं सकती, ये कहना चाहिए। अथवा एक जीव में उसके खंड खंड रूप से प्रवृत्त होने में विरोध आता है। खंड खंड रूप से नहीं, कुछ प्रदेशों में योग है और कुछ प्रदेशों में योग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसको कहते हैं खंड खंड प्रवृत्ति। इसलिए स्थित जीव प्रदेश, स्थित है जो बीच वाले जो घूम नहीं रहे वो स्थित है। स्थित जीव प्रदेशों में कर्म बंध होता है यह जाना जाता है, वो बंध से रहित नहीं है। दूसरी बात, योग से जीव प्रदेशों में नियम से परिस्पंद होता है ऐसा नहीं है। ये द्रव्य परिस्पंद, द्रव्य योग, योग तो है, कर्म बंध ही हो रहा है, परंतु वो घूमने ही चाहिए ये जरूरी नहीं।
स्पंदन होना नहीं,
पर जो स्पंदन होता है तो होता तो योग से है, परंतु योग से होता है, परंतु ये होना ही चाहिए ऐसा भी नहीं। जो होता है वो योग से होता है, परंतु योग से उसमें होना ही चाहिए ऐसा भी नहीं है। जैसे देहधारी अवस्था में 8 प्रदेशों में वो स्थित रहेंगे, घूमेंगे नहीं, घूमेंगे ऊपर नीचे उछल कूद नहीं करेंगे, परंतु उसमें बंद है, योग भी है बंद भी है। क्योंकि योग से अनियम से उसकी उत्पत्ति होती है, अनियम से उत्पत्ति होती है ना, योग के कारण किसी प्रदेशों में परिस्पंद होता है किसी में नहीं होता, ये अनियम हुआ। और वो भी विग्रह गति में सारे चलित है प्रदेश, और संसार अवस्था में यानी देहधारी अवस्था में कहेंगे, संसार अवस्था में नहीं, तो उसके वो तो 8 प्रदेशों में वो परिस्पंद नहीं होता। और योग केवल में क्या होगा, योग से सारे रहित ही हो गए। ऐसा भी है ना, जो आपने सुना होगा केवली समुद्रात होती है, केवली समुद्रात में जब लोक पूर्ण अवस्था होती है तब समयोग होता है। पहले हमने योग स्थान कैसे बताया, मिनिमम योग वाले प्रदेशों को वर्गना करेंगे पहली वर्गना, फिर उससे थोड़ा ज्यादा योग है दूसरी वर्गना, और थोड़ा ज्यादा योग है तीसरी। यानी सर्वात्म प्रदेश में समान योग नहीं होता है, कुछ प्रदेशों में ज्यादा है कुछ प्रदेशों में, सबका मिलकर एक योग स्थान कहीं में आता है। अब जब लोक पूर्ण समुद्रात है उस समय क्या होता है, सभी जीव के जितने असंख्यात प्रदेश है, लोक प्रमाण जितने असंख्यात प्रदेश है, सभी प्रदेशों में समान योग हो जाता है। उसको कहते एक वर्गना हो जाती है, ऐसा उत्पन्न कथन आता है, उसकी एक वर्गना होती है ना, सभी का योग समान होता है। वो समान योग कितना है, तो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त का जो मिनिमम योग है उससे असंख्यात गुणा वाला वो योग है। आप निकालो सपना साल में ये बात, क्योंकि अभी हमारा धवला का ही छठा भाग उसी की बात चल रही है, इसलिए ये ताजा है अभी मेरे स्मरण में है। उसका अर्थ क्या है कि समय योग है, सब में समान योग है, परंतु वहां पर भी किसी प्रदेश को नहीं छोड़ा, सभी की समान वर्गना कहेगी, यानी सभी प्रदेशों में समान योग है। और वो कितना है, तो सूक्ष्म निगुण वाला जो कोई मिनिमम है उससे असंख्यात गुणा वाला, इतना वहां पर योग है। बाद में वो योग में वो सूक्ष्म योग किया जाता है, उसमें पुष्टि वगैरह बहुत विस्तार, उसकी बात यहाँ नहीं है, अपना विषय वो नहीं है। यानी ये जो कंफ्यूजन चलता है कि नहीं घूम रहे तो उसमें बंद होगा कि नहीं होगा, कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है, समुद्घात होता है, समुद्घात है ना, आत्म प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर भी निकल सकते, जैसे केवली समुद्रात को या अन्य कोई समुद्रात को, तो उसके साथ कर्म जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तेजस शरीर कारमान शरीर, अगर नहीं मानेंगे तो उतने प्रदेश मुक्त मानने पड़ेंगे। समुदाय हुआ तो जो बाहर गए वो मुक्त हो गए प्रदेश, तो उन प्रदेशों में केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। समुदाय अवस्था में उन प्रदेशों में अगर कर्म नहीं मानेंगे तो उसको मुक्त और केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। एक ही तो पूरी ज्ञान की एक पर्याय, जितना बड़ा द्रव्य उतना बड़ा गुण, उतनी बड़ी पर्याय, ये तो हम सिद्धांत ऋषि गांधी जी की। तो क्या मानना पड़ेगा? द्रव्य तो इतना बड़ा है, उसका ज्ञान गुण तो इतना बड़ा है, पर अभी उसने समुद्रात किया ना, तो इतने में केवल ज्ञान नहीं है, और जो बाहर पड़े उसमें केवल ज्ञान, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये नक्की करना है। क्योंकि ऐसा कहीं हमने सुना तत्व चर्चा में, जो बाहर निकल से उसमें कर्म नहीं होता, हमने ये क्या कहां से निकाली बात? हाँ देखो, यानी योग तो सर्वत्र है परंतु उसमें परिस्पंद होगा ही, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए वो आठ प्रदेश, जब देह, क्योंकि देह के साथ वो जुड़े हैं तो वो आठ प्रदेश वहां फिक्स है, बस इतनी उसकी बात है और कुछ नहीं। उसमें कर्म बंधन सब कुछ चल रहा है, उसमें राजद्वेष भी हो गए कि नहीं हो गए? सब कुछ होगी ना, कषाय भी हो गए, योग भी होगा, बंध भी होगा, सब कुछ होगा, ये स्थिति अनुभव सब, यानी वो भी प्रदेश कर्मों से खचाखच भरे हुए है।
वो
स्थित है ऐसा, भाव योग उसमें भी है, यानी भाव योग क्यों हो रहा है? शरीर नाम कर्म का उदय, वो भी सर्वात्म प्रदेशों में है, क्योंकि सर्वात्म प्रदेशों में कर्म है तो सर्वात्म प्रदेशों में कर्म का उदय भी होगा, और सर्वात्म प्रदेशों के द्वारा कर्म को लिया जाता है, ये भी बात आएगी। अभी अपना हुआ नहीं ना प्रदेश बंध का प्रकरण, उसमें ये बात आएगी। तो कहते यानी जीव प्रदेशों में परिस्पंद उत्पन्न होता है तो योग से ही होता है, परंतु योग होगा इसलिए सर्वत्र होगा ऐसा भी नहीं, वो तो आत्मा नहीं भी होगा, परंतु उस परिस्पंद विग्रह गति में तो होगा ही होगा, वो आठ प्रदेश उसमें से भी नहीं छूटे हैं। विग्रह गति जो है वहां पर कोई शरीर से बंध हुई अवस्था नहीं है, अवधारिकादि शरीर से मुक्त है, कारमान तेज शरीर है वहां पर, परंतु वहां वो आठ प्रदेश भी स्थित नहीं, वो घूम रहे, सारे चल रहे। संसारी अवस्था में तीन प्रकार का, सब जगह घूमेंगे घूमेंगे, वो वहां पर फिक्स नहीं है, यानी वो तो अस्थित है वहां पर,
मतलब परिस्पंदन का फिर घूमना ही हुआ ऐसा अर्थ हो गया ना?
हाँ, परिस्पंद कहो, उसमें चंचलता कहो, इस तरह से, यानी वो अपनी यहाँ पर भी वो उस टाइप की चंचलता होगी, परंतु वो अपनी जगह छोड़ नहीं रहे, बस इतनी बात है। परंतु ये जो जगह छोड़ने वाले वो भी प्रदेशों के ऑर्डर नहीं चेंज हो गए, वो एक प्रदेश की जो ऑर्डर है वो कभी नहीं छूटती। जीव के जो असंख्यात प्रदेश, जो प्रदेश जहां पर स्थित है वहीं पर है, परंतु वो सब प्रदेश ऐसे घूमेंगे कि उनकी वो ऑर्डर चेंज हुए बिना उनका जो कुछ घूमना होता है वो होता है। अभी हम शुद्ध ज्ञानी उसमें कितना इमेजिन कर सकते हैं, यानी शरीर वहां पर रहते हुए जीव और कर्म एक साथ उसमें घूमेंगे, ये उसका अर्थ है। क्योंकि जिस प्रदेश में जो कर्म है वहां तो है ही वो, उसके साथ वो, क्योंकि प्रश्न यहाँ क्यों उठा है, कर्म घूमते हैं कि नहीं घूमते है प्रश्न था। तो कहते जो घूमने वाले प्रदेशों में कर्म है वो घूम रहे हैं, जो स्थित प्रदेशों में कर्म है वो नहीं घूम रहे हैं, परंतु कर्म नहीं होने की बात ही नहीं वहां पर, कहीं पर कहीं पर भी नहीं। अभी जो कुछ होगा, हाँ, केवल ज्ञान गम्य इंद्रिय गम्य बातें नहीं है, उसको ये साइकिल के चाक जैसी उपमा देते हैं ना, जैसे चाक घूम रहा है, पर ऐसा कोई सिंगल लेयर वाला आत्म प्रदेश नहीं, वो तो घन स्वरूप है, थ्री डायमेंशन वाला है। अभी रुकेंगे यहीं पर, बाकी चर्चा शाम। बोलो 24 लोग।